आगे देखेंगे। पारे की पहली आयत है और हमारा सबक उसी का कंटिन्यूशन है, आयत नंबर 53। ममा उबर्री नफसी, मैं अपने आप को बरी उज़िमा करार नहीं देती, क्योंकि इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सुई, यकीनन इंसान का नफ्स तो बुराई ही का हुक्म देता है। क्या सबको? नहीं, इल्ला मा रहमा रब्बी, सिवाय उसके जिन पर मेरा रब रहम फरमाए, क्योंकि इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम, मेरा रब बेशक बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। अब यहाँ कलाम का सीगा है, वाहिद मुतकल्लिम के सीगे हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि फर्स्ट डिग्री है। ये किसका कलाम है? इसके बारे में मुफस्सरीन की दो तीन मुख्तलिफ राय हैं, जिसमें एक राय तो यही है कि ये कॉल पीछे से मिलाया जाए तो अज़ीज़ मिस्र की बीवी का कॉल है, क्योंकि जब उसको अल्लाह ने तौफीक दी, और बाज़ कहते हैं कि इससे साबित हो रहा है कि उसने तौबा कर ली थी, अल्लाह ने उसका दिल खोल दिया, तो किसी इंसान से कोई बुरी चीज़ हो जाए तो उससे अच्छी बात की तवक्को ही ना रखना, ये भी गलत है। तो ये कॉल अज़ीज़ मिस्र की बीवी का, और वो इस कॉल में क्या कह रही है कि मैं पिछली आयत में आप देखें ना कि उसने ये कहा कि ज़ालिकली यालमा अन्नी लमखुन हु बिलगैब, कि ये बात वो जान ले कि मैंने उसकी गैर मौजूदगी में कोई ख़यानत नहीं की। ये जुमले के हमने मुख्तलिफ मानी देखे, शोहर की गैर मौजूदगी में, इसी तरह वो कह रही है कि मैंने यूसुफ़ के बाद, यानी अभी तो वो जेल में, तो मैंने उसकी तरफ कोई गलत बात नहीं की। तो ये कॉल ज़्यादा करीना क्या चाहिए कि ये अज़ीज़ मिस्र की बीवी का कॉल है, कि वो कहती है कि मैं अपने नफ्स को बरी नहीं समझती, यानी जो कुछ हुआ मुझसे हकीकत में हुआ, ये मेरे नफ्स का गलबा था जो मेरे ऊपर आ गया, और उसकी वजह से मैं अपने आप को बचा ना सकी, क्योंकि नफ्स होता ही बुरा है। अब ये बात बिल्कुल वाज़े है, क्योंकि उसने कोशिश तो की थी ना अटेम्प्ट करने की, तो ये नफ्स की शरारत थी। अभी इस पर थोड़ी सी हम बात करेंगे, गुनाह का असल फेल हुआ कि नहीं हुआ उसको छोड़ दें, लेकिन नफ्स ने इसकी ख्वाहिश तो कर दी थी। बस कहते हैं कि नहीं, ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कॉल है। उनके दलाइल क्या? कहते हैं इतना खूबसूरत जुमला वो औरत कैसे बोल सकती है जो एक मर्द को गुनाह की दावत दे? तो फिर आप तो इस बात का इनकार करेंगे ना कि जिसने एक दफ़ा कोई गुनाह किया वो नेक हो ही नहीं सकता। हालांकि हम पीछे पढ़ते हैं कि लोगों से ख़ताएं हुई, लेकिन बाद में अल्लाह ताला ने नबूवत पे भी डाल दिया। तो ये बात हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरफ मनसूब करनी सिर्फ इस वजह से कि ये बात बहुत खूबसूरत है, तो ये बात दुरुस्त नहीं लगती। दूसरी वजह यह है इस बात को ना मानने की, वल्लाहु आलम दोनों भी ठीक हो सकती हैं, क्योंकि बात ठीक है, वो यूसुफ़ कहें या अज़ीज़ मिस्र की बीवी कहें, बिल्कुल दोनों बातें ठीक हैं। लेकिन यहाँ ये बात समझ आती है कि यूसुफ़ तो उस वक़्त वहाँ थे ही नहीं, क्योंकि अगली आयत से भी आप देखेंगे कि ये सारी कन्वर्सेशन हो चुकने के बाद फिर यूसुफ़ को जेल से बुलाया गया था। उन्होंने तो बाहर निकलने से इनकार कर दिया था कि मैं तो बाहर नहीं जब तक कि मेरा ये मामला ना पूरा हो जाए। तो लिहाजा हजरत यूसुफ की बजाय अज़ीज़ मिस्र की बीवी का ये कॉल है, लेकिन कॉल जिसका भी है बात बहुत बड़ी हकीकत की है। और वो क्या कि जब कोई बंदा अपने आप को नफ्स के हाथों में डाल देता है तो नफ्स तो क्या है, अम्मार। आइए थोड़ी सी अपने बारे में बातें करते हैं। लफ्ज नफ्स जो है, इन द नफ्स अल्लामार तुम बिस्सू, नफ्स इंसान के अंदर की वो कैफियत है जिसको वो मैं कहता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं, मेरा ये नाम, मैंने खाया, मैंने पिया, तो ये मैं क्या है, नफ्स है। कुरान पाक में दिल के लिए भी ये लफ्ज़ आया है बहुत जगह, ठीक है, शख्सियत के लिए भी आता है, अफराद के लिए भी आता है, लेकिन यहाँ इससे क्या मुराद है? यहाँ इससे मुराद है इंसान के अंदर का वो जज्बा जो उसको गुनाह पे माइल करे। जब हम मुख्तलिफ अहादीस को जमा करते हैं तो नफ्स की तीन किस्में मिलती हैं, नफ्स अम्मारा जिसका तज़किरा यहाँ आ गया, नफ्स लवामा जिसका तज़किरा सूरत क़यामत में आएगा, और नफ्स मुतमईना जिसका जिक्र सूरत फजर में आएगा। अब नफ्स की हालतें कैसे होती हैं, सीडी में मौजूद है, बहुत ज़्यादा बनी थी पिछले चंद वीक पहले, तो उसमें पूरा सिर्फ इस एक आयत पे ऑलमोस्ट जितनी भी लंबी सीडी आप सुनेंगे, हालांकि लेक्चर उससे भी लंबा था, तो इस पर तफसील से बात हुई है। आपका दिल चाहे तो आप सुन लें, इसका लिंक डाल दें वेब पे। लेकिन अब मैं ज़ाहिर है कि आपके लिए यहाँ एक ख़ुलासा उसका देना चाहूँगी, और वो ख़ुलासा क्या है कि हर इंसान के ऊपर अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को और एक शैतान को मुकर्रर किया हुआ है। हम सब के ऊपर एक हमला बाहर से हो रहा है और एक अंदर से हो रहा है। अंदर के हमले में कौन हमला करता है? शैतान हमें बुरी बातों का हुक्म देता है। जब भी हमारे सामने नेकी का कोई मौका आता है तो हमारा शैतान हमें उससे रोक देता है, सोचों में डाल देता है, मुगालतों में डाल देता है, नहीं 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 ना करना, डिले कर दो, सुस्ती का शिकार, बहसों में डल जाता है। होता क्या कि इंसान जब अपने नफ्स को उस शैतान के हवाले कर देता है तो उसका नफ्से अम्मारा मजबूत हो जाता है। अगर आप इसको लिखने के लिए एक छोटा सा चार्ट बना लें, आप एक ऐसे ही डमी सी इंसान का, वो जैसे हैंगमैन होता है वो बना के देखें, उसके अंदर दिल है, दिल के ऊपर हर वक्त दो फोर्सेस हैं, एक फरिश्ते की तरफ से जो नेकियों का हुक्म देता है, नेकी का मौका है तो कहता है ओ कर लो, करो करो, शाबाश तुम कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, इट्स ईजी। लेकिन दूसरी तरफ साथ ही शैतान आ जाता है, ना करो। ये किस सूरत में आता है? अगर आप अपनी प्रैक्टिकल कोई कैफियत सोचें, जब भी कोई नेकी का मौका आता है, फजर की नमाज सबसे बड़ी नेकी है, उठते ही सुबह सबसे पहले जो हमारे अंदर जंग लगती है वो क्या होती है? फजर की होती है। अजान सुन के या अलार्म सुन के इंसान कहता है उठो, वो कौन कह रहा था उठो उठो? फरिश्ता कह रहा होता है। और एक और कुवत होती है, अभी थोड़ा सो लो, अभी रात बड़ी लंबी है, अभी दिन शुरू है, अभी तो बहुत लंबा दिन है फिर, तो वो कौन सी है? शैतान। तो शैतान वसवसों की सूरत में दिल के अंदर ऐसी बातें करता है, डालता है, और एक फरिश्ता उसको अच्छी बातें बताता है। अगर इंसान ऐसे वक्त में फरिश्ते की मान ले तो फरिश्ते से उसकी दोस्ती हो जाती है, फिर अगली नमाज पढ़ने को और भी दिल करेगा। दिन ब दिन अच्छी बातें मानने से दोस्ती फरिश्ते से हो जाएगी, और शैतान एक वक्त आएगा कि मायूस हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है किसने मेरी माननी नहीं है। दोस्ती किससे होती है? जिसकी बातें हम मानते हैं। लिहाजा नतीजा क्या निकलेगा कि जब हम शैतान की मानते रहते हैं तो शैतान से पक्की गहरी दोस्ती हो जाती है, और फरिश्ता फिर एक वक्त आता है कि नेकी की बात क्या नहीं छोड़ देता है। बस इस कैफियत को सामने रख लें, जिसने फरिश्ते की मान ली, बिल आखिर उसका नफ्स नफ्से मुतमईना बन जाएगा, जो हम इंशाल्लाह सूरह फजर में पढ़ेंगे। जिसने फरिश्ते की बजाय शैतान की मान ली, उसका नफ्स फिर नफ्से अम्मारा बन जाएगा, नफ्स फूलने लगता है, मोटा होने लगता है। नफ्से अम्मारा कहते हैं वो नफ्स जो सरकशी में, जो गुस्से के वक्त और जो ख्वाहिश के वक्त इंसान के ऊपर से उसका कंट्रोल ख़त्म कर दे। यानी नफ्से अम्मारा क्या है? ऐसा नफ्स जो हमें गुस्से के वक्त आउट ऑफ कंट्रोल कर दे, जब हम किसी ख्वाहिश के नशे में चूर हैं तो हमें उस वक़्त वो उस नशे में चूर कर दे, यानी कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अगली कैफियत लवामा की होती है, उसकी बातें वहाँ पढ़ेंगे जाके, लेकिन यहाँ समझ लें कि जितना नफ्से अम्मारा बुराइयों पर शेर होता है ना, तो अंदर एक कुवत उभरती है जो मलामत करती है, जो शेम शेम कहती है, शर्म नहीं आती, देखो गलत काम करके आए हो। और ये वो गिल्ट है जो किसी को पता चले ना चले, हमको खुद पता चल जाता है अपने गुनाह का, इसको लवामा, मलामत से। और इसको हम अपनी जुबान में जमीर कहते हैं, जमीर, ठीक है। जितना इंसान का नफ्से लवामा स्ट्रांग होगा उतना नफ्से हमारा दबेगा, क्योंकि देखे ना, एक काम आप कर रहे हैं बाद में आपकी बेइज्जती हो, एक काम आप कर रहे हैं बाद में आपको उसके बैड इफेक्ट्स दिखने पड़े, तो फिर आप एक वक्त आएगा कि ना छोड़ देंगे। लेकिन अगर इंसान नफ्से लवामा की बार बार की मुदाखलत यानी इंटरफेरेंस के बावजूद भी गलत काम करता रहे, तो नफ्से लवामा भी उससे रूठ जाता है। ये बिल्कुल उस दोस्त की तरह कि जो बार बार आपको बुलाए और आप ना आए तो कहता है अब मैं तुम्हें बुलाऊंगा ही नहीं, ठीक है। तो नफ्से लवामा जो है ये आखिरत के लिए जीना चाहता है, इंसान को कहता है आखिरत के लिए जियो, और गलत कामों पे रोकता है। इसके बाद आप देखिए कि जब इंसान नफ्से अमारा के हाथों में अपने आप को दे देता है ना, तो होता क्या है? तफसीर कुर्तुबी की एक रिवायत में आता है कि नफ्स शैतान की सवारी है जिसके जरिए वो इंसान में दाखिल होता है। अल्लाह अकबर, इमेजिन तो कीजिए ज़रा, आपको इस कमरे में आना था, इस होटल में आना था, तो आप किसी गाड़ी पे बैठ के आप आए ना, कुछ नहीं हुआ तो पैदल अपने पाँव की सवारी पे तो आए। इंसान के जिस्म के अंदर शैतान नफ्स के रास्ते से आता है, ये इतना जालिम है, किसी जोगा नहीं इंसान को छोड़ता कि इंसान सरासर अपने खिलाफ काम कर रहा होता है, लेकिन वो कह रहा होता है कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। फिर वो जो ही अंदर आ जाता है फिर वो उसको कंट्रोल करता है। आप इमेजिन करें कि जैसे हाईजैकिंग होती है ना, जो हाई जैकर्स होते हैं वो जहाज के अंदर मौजूद होते हैं ना, किसी तरह वहां दाखिल हो जाते हैं। जब जहाज एक खास बुलंदी पे जाता है तो वो जाके पायलट को ट्रैप करते हैं और जहाज का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं, बिल्कुल नफ्से अमारा जो है वो इज अ हाई जैकर। इंसान को वहां जाके जैक करता है कि इंसान सोच नहीं सकता, कि वो कहता है कि अब मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। कह दिया ना पीछे नहीं हटूंगा, मेरी बेइज्जती हो गई, मेरी इंसल्ट हो गई, मुझे छोटा समझा, मेरी कदर नहीं की, मुझे डिवैल्यू किया, मुझे ह्यूमिलिएट किया। और ये सब कर किस नाम से होता है? इज्जत के नाम से। बिकॉज आई हैव इज्जत, बिकॉज आई हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, बिकॉज आई हैव दिस, करते करते वो पूरा जहाज जो उसकी किरदार का जहाज है उसको हाईजैक करके जमीन पे गिरा देता है। लेकिन इंसान को समझ नहीं आती। अल्लाह के नबी सल्लम ने अपने सहाबा से एक बार पूछा, ऐसे रफीक के बारे में तुम्हारा क्या मामला है? रफीक से मेरा दोस्त, अब आप अपने लफ्जों में सुन ले, तुम ऐसे दोस्त के बारे में क्या कहोगे कि तुम जितनी उसकी इज्जत करो, उसकी खातर करो, उसको खिलाओ, उसको पिलाओ, उसको सर्व करो, उतना वो तुम्हें मुसीबत में डाले, बला में डाले और तुम्हें ह्यूमिलिएट करे। सहाबा ने कहा, इससे भी बुरा कोई एहसान फरामोश होगा? आप अपने ऊपर ले ना, कोई नौकर, कोई घर का बंदा, कोई खानदान का बंदा, कोई रिश्तेदार, जितनी आप उसको इज्जत दें वो उतना ही तड़पता जाए और सर पे ही सवार हो जाए। साहब ने कहा, ये तो बहुत बुरा दोस्त है। तो अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, उसके बारे में क्या ख्याल है जो तुम्हारे दिल में रहता है? फरमाया, इंसान का नफ्स इससे भी बुरा दोस्त है। जितना तुम इसकी बातें मानते हो, जितना इसको पेम्पर करते हो, जितनी इसके तुम गुनगाते हो ना, उतना ये इंसान को जलील और रुसवा करता है। और जितना जरा आप इसको घूर के देखें ना, तो ये बिल्कुल ठीक रहता है। जिस तरह आप कहें कि इंसान का बच्चा और जिन का बच्चा, कहते हैं कि इसको जितना घूरे ना, जितना कंट्रोल में रखें, ये उतना सही रहता है। और जरा सा ढीला करके तो देखिए, फिर देखें आपके सर पे चढ़ के रोएंगे और फिर भी कहेंगे कि हमारे साथ ज्यादती होती है। तो असल चीज़ क्या है? नफ्से अमारा जो है ना, इसमें दो बड़ी चीजें याद कर लीजिए, दोनों शीन से शुरू होती हैं, शहवात और शुबहात। दुनियादार लोग जो होते हैं ना, जिनको आप कहें कि लेस रिलीजियस पीपल, उनको शहवात में डाल देता है। आज कितने लोग क्यों नहीं आ पाते, कभी आपने सोचा? क्या उनको नहीं पता कि हमें कुरान की जरूरत है? क्या उनको नहीं पता कि इससे हमारी जिंदगी कितनी खूबसूरत होनी है? लेकिन पीछे क्या है? शहवात। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसा से लेके आगे किया है। आज ये काम, आज ये खाना, आज ये पीना, आज ये लेना, आज वो देना, आज इधर को मिलना करना, दुनिया शहवात की सूरत में आती है। तो शैतान आधे लोगों को तो शहवात की वजह से पहले ही अल्लाह और उसके रास्तों से दूर रखता है। ठीक है, वो करना चाहते हैं, नमाज कौन नहीं पढ़ना चाहे, लेकिन कहाँ जाती है नमाजें? पहली फजर नींद की शहवत, जोहर जो है वो खाने पीने की शहवत, असर मगरिब शॉपिंग की शहवत, और ईशा में पाँव में खलियां पड़ी हुई थी तो थक हार के सो गए तो इसकी शहवत। बाकी आधे लोग जो दीन पे आ जाते हैं, जिनको समझ आती है कि नो, ये हमारे लिए ऑक्सीजन मास्क की तरह, हमें इसको लेना है, तो फिर उनको किधर डाल देता है? ये बाप की मेरी बात हो रही है, जिनको पता है दीन क्या है, जिनको पता है इस्लाम क्या है, कुरान क्या है, नबी क्या, अल्लाह उसका रसूल, और अब तो कुरान से भी दोस्ती हो गई, इनको किस में लेके आएगा? शुबहात में लेके आएगा। जो दीन पे एक दफा आ जाते हैं ना, फिर उनके पास भी कभी कभी पैंतरे बदल के आता है। सोच लो, ठीक है क्या इनके मोटिव्स? ठीक है ये जो कुरान पढ़ा जा रहा है, ये ठीक है? ये मसलक तो नहीं बदल देंगे? ये तुम्हें तुम्हारे बाप दादा से दूर तो नहीं कर देंगे? और तुम्हें एक्सट्रीमिस्ट तो नहीं बना रहे? और तुम्हारे बच्चों के रिश्ते हो जाएंगे? और कहीं तुम्हारे शौहर दूसरी शादी ना कर ले? और देखो तुम तो इतनी मोटी हो रही हो, तो अब तो तुम बस बिल्कुल ही बीमार हो जाओगी, बल्कि हॉस्पिटल तक छोड़ आते इस तसव्वुर में, तब तुमने मर जाना है, क्योंकि तुम दिन में 3, 4, 5 घंटे जब वो बैठी रहती है और कुरान सुनती हो। इस तरह के ना नजर आने वाले शुबे डालता है दीन में, दीन की बात में, दीन के काम में, दीन की जगह में, कि जिसके बाद आते आते बंदे के कदम रुक जाते हैं। शुबे कई किस्म के डाल देता है। तुम्हारी वैल्यू कोई नहीं पहचानता, तुम्हें कोई कदर नहीं करता तुम्हारी, तुम्हारी लेग पुलिंग होती है, तुम्हें कोई आगे नहीं आने देता, तुम्हें कोई पीछे नहीं जाने देता, तुम्हें तो ये समझे ही नहीं, तुम जैसा बंदा ये क्या पब्लिक में आके बैठ गया, इसको तो इंटेलेक्चुअल्स में होना चाहिए। इस किस्म के सारे शुबे डालता था। बस आप देखिए कि मक्का वाले 13 साल नबी सल्लम के साथ रहे, क्या शुबा डाला शैतान ने उनको? एक लफ्ज़ में को बता सकता है? अब तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्या ख्याल था मक्का वालों को जिसने अल्लाह के नबी तक नहीं आने दिया। जी बोल दे, सब बोल दे। चले, मदीना वालों को किस चीज से रोका था? देखिए, दो एक जुमला अक्सर बोलती हूँ मैं, मक्का वालों की दुश्मनी पैगाम से थी। दे डोंट लाइक द मैसेज ऑफ इस्लाम, दे डोंट लाइक द थीम ऑफ इस्लाम। उनको इस्लाम का पैगाम ही नहीं अच्छा लगता था कि ये क्या खानदान के रस्म व रिवाज तौर तरीकों से जिंदगी मुख्तलिफ कर रहा है। और मदीनों वालों की दुश्मनी पैगाम्बर से थी। यारिफूनहू कमा यारिफून अबनाअहुम, ये इसको इस तरह पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, इसके बावजूद भी नहीं माना उन्होंने। दोनों का नतीजा क्या निकला? मक्का के बड़े बड़े सर बदर में कुचल दिए गए, और जो मदीना के मुनाफिक थे उनको तबूक में जाके रुस्वा कर दिया। तो ये दो चीज़ों पे अगर काबू पा लिया तो फिर आप देखेंगे कि नफ्स की चीज़ों से हम अपने आप को बचा लेंगे। फिर आप देखिए कि नफ्स हमारा की जो मरहूब गजा है ना, फेवरेट फूड ऑफ द नफ्स हमारा, वो शिर्क है। ये शिर्क से बात शुरू होती है जिसका नुक्ता आगाज ना शुक्री होता है। इंसान पहले अल्लाह की कदर छोड़ता है, उसकी कदर ही नहीं कर पाता, फिर अल्लाह के साथ दूसरों को इस पार्टनर बनाता है, फिर होते होते अल्लाह के हुक्मों में दूसरों को इस तरह से इन्वॉल्व करता है कि उसके नतीजे में इंसान शिर्क से होते हुए पहले कबायर और फिर उसके बाद सगायर की तरफ चल पड़ता है और बुरे से बुरे काम करने लग जाता है। अब करें क्या? देखिए, इस पे लोगों ने बहुत कोशिशें की, हर मजहब में की। लोग किस चीज़ पे निकल गए? नफ्स खुशी पे। ये लिखिएगा बाप कि इस्लाम हमें नफ्स खुशी नहीं सिखाता, यानी टू किल योर नफ्स खुशी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? जिस तरह आप कह लेना कि रहबानियत थी, ख्वाहिशें ख़त्म, शादी नहीं करनी, कपड़े अच्छे नहीं पहनने, खाना अच्छा नहीं खाना, बासी खाना खाना, ये सब हम पढ़ेंगे सूरह हदीद में जाकर। यानी क्रिश्चियनिटी के जो स्कॉलर्स थे ना, वो जब नफ्स को काबू पाने पे गए ना, तो उन्होंने इसको बिल्कुल ही ख़त्म ही कर दिया। वो कहते तुम हो ही ना। आज हमारे यहाँ इसकी बिगड़ी हुई शक्ल जो है वो तसव्वुफ के एक ख़ास एंगल में मिलती है। तसव्वुफ बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है, इसमें बहुत कुछ है, लेकिन एक ख़ास तबका ऐसा आ गया कि जिन्होंने नफ्स खुशी तक पे अपने आप को रख दिया कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, वो एक एक्सट्रीम है। इस्लाम क्या चाहता है? नफ्स खुशी नहीं, नफ्स पर काबू, यानी सेल्फ कंट्रोल इस्लाम सिखाता है, सेल्फ वर्शिप नहीं सिखाता। तकवा की लगाम जब डाल दी जाए तो नफ्स इंसान के काबू में आ जाता है। फिर आप देखिए कि इस पे एक मैंने वो लेक्चर में मिसाल दी थी, आप सुन लीजिएगा डिटेल से कि किस तरह से एक गाड़ी है, आप कोई भी एक बग्गी सोचिए जिसके आगे एक सफ़ेद घोड़ा है और एक काला घोड़ा है। मुराद क्या है कि गाड़ी बग्गी सीधी चले, बग्गी समझते हैं ना जिसको दो घोड़े खींचते हैं। अब एक काला घोड़ा है जिसकी ख्वाहिश क्या है कि मैं ज़मीन के अंदर ही दब जाऊँ, और एक सफ़ेद घोड़ा दूसरा है उसकी ख्वाहिश है कि मैं आसमान पर उड़ूँ। अब क्या होगा? अगर आप सफ़ेद घोड़े को खूब खिलाएंगे पिलाएंगे तो वो बग्गी दुनिया की रोड पे चलने की बजाय उड़ने लग जाएगी, जो मकसूद नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। अगर आप काले घोड़े को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो क्या होगा कि वो बग्गी को लेकर ज़मीन के अंदर घुस जाएगा। करना क्या है? दोनों घोड़ों को बैलेंस पे रखो, काले को और सफ़ेद को एक जितना उसको खाना दो करो, और जो नफ्स की बग्गी है वो सीधी चलती जाए। ये जो काला घोड़ा है ना, ये नफ्स अमर है, ठीक है, जो इंसान को बिल्कुल दुनिया के साथ ले जाना चाहता है। जो सफ़ेद घोड़ा है ना, ये रूहानियत का घोड़ा है, यानी स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल नीड्स और फिजिकल नीड्स के बीच में रहते हुए इसको चलाते जाएंगे तो बात सच की होगी। अल्लाह के नबी सल्लम इसकी बेहतरीन मिसाल थे। आप में रूहानियत भी अरूज पे थी और जिस्मानियत भी आपकी बड़ी खूबसूरत थी। आपके अंदर आम मर्दों से ज़्यादा ताकत थी, खाने की, पीने की, जिन्स की अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ी खूबी दी थी। आज भी आप देखेंगे कि जितना इंसान गुनाहों से अपने आप को पाक रखता है ना, उसकी ये सारी सलाहियतें दूसरों से बढ़ जाती हैं। और जो जितना गुनाहों में पड़ा, सिगरेटों में पड़े, ड्रग्स में चले गए, हराम चीज़ों को देखने सुनने बोलने लग गए, आप देखेंगे कि उनके अंदर से वो खूबसूरती भी ख़त्म हो जाती है। वो सिर्फ़ एक जान छुड़ाने के लिए अपने नफ्स के तकाजे पूरे करते हैं। तो लिहाजा करना क्या है कि नफ्स अम्मारा और नफ्स लवामा की जंग में हमने नफ्से लवामा को जिताना है ताकि बिल आखिर हम नफ्से मुतमईना बन सकें और हमारी मौत की सूरत में पुकार लगे कि या यतुहन नफ्सुल मुतमईना इर्जिला रब्बी की राधियत मर्दिया, चल अपने रब की तरफ, तेरा रब तुझसे राजी है। और जब हम इस सूरत में अल्लाह के पास जाएंगे जिस सूरत में दुनिया में आए थे, मासूम, भोले, इनोसेंट, दिल में ग्रज नहीं, दिल में नाफरमानी का शायबा नहीं, कनात है, बिल्कुल बच्चे वाली कैफियत जब दिल में आती हैं तो इंसान का नफ्स नफ्से मुतमईना बन जाता है। हम अल्लाह ताला से भी दुआ करेंगे कि हमें अपने नफ्स के ऊपर काबू पाने वाला बना दे। और नफ्स अम्मारा को दबाने का एक ही तरीका है कि इसकी कम मानो। आप इसको अपने बच्चों पे लेके देख लीजिए, आप अब चाहती हैं कि आपके बच्चों के नफ्से हमारा दबे तो उनकी बातें कम माने, उनको दबा के परविश दे। हम आज के दौर में जो लाइफस्टाइल इर्द गिर्द देखते हैं वो नफ्से हमारा को मोटा करने वाला है। उनकी बेसिक नीड्स के नाम पर उनकी जाहरी चीजों को इतना अहम समझ लेते हैं कि छोटा सा बच्चा हमें घर से बाहर निकालने और अपनी ख्वाहिश पूरी कराने पर मजबूर कर लेता है। कभी आपने सोचा, कभी ऐसा आपने कभी सुना था कि एक माँ जो आखिर बच्चे से कोई 25-30 साल तो बड़ी होती है ना, 2, 3, 4, 5 साल का बच्चा उसको इतना फोर्स करे कि माँ के चलो मैं तुम्हें ले जाती हूँ आइसक्रीम खिलाने, चलो मैं तुम्हें ले जाती हूँ दोस्त के घर, मैं तुम्हें ले जाती हूँ तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कराने, ये गलत बात है। इसलिए कि हमने अपने बच्चों को खुद ब खुद बड़ा बना दिया। बहरहाल ये एक बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन इस वक्त हमारे लिए इतनी ही बात है कि हम अपने नफ्स को दबाएं, इसको मारना नहीं है, इसको जायज़ हद तक रहें। एक दिन अच्छा खाना खाएं ना तो दूसरे दिन पुराना खाना खाएं, एक दिन बेहतरीन कपड़े पहन रहे हैं ना तो फिर 2 दिन तो कम से कम ऐसे कपड़े पहने कि जिसमें आप ज़रा अपने आप को भी अच्छी ना लगे। इसलिए कि जब बहुत मोटा होने लगता है ना नफ्स, तो फिर अल्लाह की नाफरमानियाँ होने लगती हैं। और दुआ करते हैं कि अल्लाह हम पे भी रहम कर दे। या आप देखिए, माँ रहम रब्बी, मन नहीं, माँ गैर अकिल के लिए आता है, यानी बहुत ही इसको अल्लाह ताला ने छोटे लेवल पे लेके कहा कि तुम अपने आप को क्या समझते हो, तुम अल्लाह की बात मानो फिर समझ आएगा। तो लिहाजा ये कॉल किसी का भी है, लेकिन बात बड़ी खूबसूरत है। अब इसके बाद आप देखिए कि अजीज मिसर की बीवी का जो 51 आयत में एक जुमला था कि अना रावत हुआ नफ्स ही व इन्नहु लमिन सादिकीन, कि हाँ ये मैं ही थी जो इसको अपने नफ्स से माइंड करती थी और ये सच्चा है। तो यहाँ से भी पता चलता है कि औरत ही का कलाम है। और ये सब कुछ हजरत यूसुफ की गैर मौजूदगी में बादशाह के सामने हो रहा है। अब आगे देखिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पे लगा हुआ इल्जाम कैसे ना धुलता। तकलीफ देने वालों ने तो खुद सबके सामने इतराफ़ जुर्म कर लिया। अगर उस दिन शोहर की मौजूदगी में अजीज मिस्र की बीवी इकरार जुर्म करती तो वो कितनों को पता चलता, सिर्फ यूसुफ और उसके शोहर को, और अगर वहां कोई घर में था। अल्लाह ताला ने उस वक्त उससे वो काम ना लेकर कर क्या दिया, यूसुफ की बेगुनाही पब्लिसाइज करा दी। अब आप सोचिए यूसुफ के किस्से हो रहे हैं। पहले जेल में कुछ शोहरत हुई, ख्वाब सुनाया, जाहिर है जिसका ख्वाब सच्चा हुआ उसने बाहर जाके 4-6 लोगों को सुनाया होगा कि मेरा एक ख्वाब था और उस बंदे ने बताया और वो सच हो गया। फिर उसके बाद बादशाह सलामत को ख्वाब आ गया तो उस ख्वाब की ताबीर के सिलसिले में थोड़ा सा यूसुफ को कवरेज मिली, आज के दौर में कह लें कि मीडिया पे आ गए यूसुफ अलैहिस्सलाम। अब उसके बाद यूसुफ को बुलवाया गया, जाओ। अब आप सोचे ना, आज का कोई चैनल हो तो मिनट मिनट की रिपोर्टिंग कर रहा हो, अब पता चल रहा है जी कि यूसुफ साहब ने तो आने से बाहर इनकार कर दिया, फिर एक हेडिंग लगेगी, फिर एक बहुत बड़ी सुर्खी लगेगी अखबारों में कि जी उन्होंने तो आने से इनकार कर दिया। अब इससे भी यूसुफ की शोहरत फैली, अब मुकदमा चला। अब आप सोचे सारी दुनिया के रिपोर्ट और इन जो भी कैमरामैन है वहां खड़े होंगे, सबके सामने जब औरतों ने अपने ऊपर इल्जाम लिए, इकरारे जुर्म किया, अब आप कह सकते हैं कि यूसुफ को फुल एक्सपोजर मिल गया। ये है जिसका अल्लाह ताला इंतजार कर रहे थे यूसुफ के लिए। जब यूसुफ की इस तरह से शोहरत फैल गई और बादशाह को यकीन हो गया कि जेल में तो पड़ा हुआ लेकिन है वो हीरा, तो कहने लगे आयत 54, वकाल अल मलिक तूनी बिही अस्तखलिसु लिनफ्सी, और बादशाह ने फैसला कुनंदाज में कहा इसको मेरे पास ले आओ, मैं इसको अपना खास बंदा बनाऊंगा, सेक्रेटरी बनाऊंगा, खालिस अस्तखलिस हो लिनफ्सी, यानी जिसको बिल्कुल आप इंग्लिश के सेक्रेटरी के लेके, यानी मेरे सीक्रेट्स इसके पास होंगे, ही विल बी वेरी क्लोज टू मी। अब बोलो, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम आ गए। अभी तक तो यूसुफ के किस्से सुने थे ना बादशाह ने, अब मुलाकात हुई और मुलाकात में फलम्मा कल्लमहू قال انك اليوم لدينا مكين امين. تو جب بادشاہ نے آپ سے بات چیت کی تو کہا آج کے دن تو آپ ہمارے نزدیک بڑے ہی باعزت اور معتبر انسان ہیں. پہلے کیا رائس تھی؟ جب تک صرف یوسف کے قصے سنے تھے تو بس اتنا خیال تھا کہ استخلص خلی نفسی میرے درباریوں میں شامل ہو جائے گا, میں اس کو ذرا اپنے قریبی لوگوں میں کر لوں گا. سیکٹری تو سیکٹری ہوتا ہے نا, قریب ہوگا میرا اچھا ہوگا. لیکن جب بات کی تو یوسف کے وہ گن کھلے, یوسف کی وہ خوبیاں سامنے آئیں کہ کہا نہیں 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 استخلص خلی نفسی تو بڑی چھوٹی بات تھی, اب تو ان لدین مکین و نمین, بڑا کر عزت والا اور معتبر شخص ہوگا. کیونکہ گفتگو جو ہوتی ہے نا انسان کے اندر کا ڈھکنا ہوتی ہے. ہم سب خود کو اپنی گفتگو کے آئینے میں پہچانیں. دیکھیے آج تو دل چاہ رہا ہے صرف نفس کی باتیں کروں, دل دکھتا ہے لیکن اتنا وقت نہیں ہے. لیکن یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ آج تک اتنے سال عمر ہونے کے باوجود ہم نے خود کو بھی پوری طرح نہیں پہچانا. ہمیں خود کا بھی نہیں پتہ, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اندر خوبیاں کیا ہیں خامیاں کیا ہیں. بعض دفعہ ہم اندر سے اچھے ہوتے ہیں, سچے ہوتے ہیں, کھرے ہوتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, دھوکہ نہیں دیتے, فراڈ نہیں کرتے, 420یاں نہیں کرتے, لیکن ہماری گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ جو ہمارے اندر کے کردار کا ثبوت نہیں دیتی. کسی کو کیا پتہ ہے؟ آپ دیکھیے کہ کھانا پکتا ہے تو اگر کھانے کے اندر سے ٹیسٹ تو کب آئے گا؟ جب کوئی اس کو منہ میں ڈالے گا. سب سے پہلی چیز انسان کو کیا ملتی ہے اس چیز کے وقت؟ خوشبو. تو گفتگو خوشبو ہے. ہم بہت اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن ہم گفتگو کے میدان میں ہار جاتے ہیں. ہم اسے ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے, جب میں دوسروں سے بات کر رہی ہوتی ہوں اس وقت میں کیا لگ رہی ہوتی ہوں؟ کسی کو کیا لگے میں کتنی اچھی ہوں, میں کتنی نمازی ہوں؟ بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ مخالفت ہو جاتی ہے, کہیں کانٹراڈکشن آ جاتا ہے, غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں زندگی میں. بعض دفعہ لوگ ہماری امیدوں پہ پورے نہیں اترتے, ہم ان کی نہیں اترتے. میرا کب پتہ چلے گا کہ میں کیا ہوں؟ میری اس سے گفتگو سے. اتنا مضبوط ہتھیار ہے شیطان کا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ انسانوں کو گفتگو کے دوران ہرا دیتا ہے اور اتنے اچھے اچھے لوگوں سے اتنی بڑی بڑی غلطیاں کرا دیتا ہے کہ شیطان بھی تالیاں بجاتا ہے کہ دیکھا آج میں نے اس کو اپنے آپ پہ لے لیا. مثلا ہم کب پہچانے اپنی گفتگو؟ سب سے بڑی گفتگو تو ہماری گھر والوں میں ہی ہوتی ہے. بچوں سے بات کرتے ہوئے, ان کو ڈانٹتے ہوئے, شوہر سے بات, سسرال سے بات, دوستوں میں بات, اور عام حالات کی باتیں نہیں ہیں. جب کوئی معاملہ بگڑ جائے خود سے پوچھئے, لکھئے, جب میری کسی سے بات بگڑتی ہے. اب بات بگڑنے کو محاورتاً بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. کوئی اختلاف رائے ہو گیا, میں کچھ کہہ رہی تھی, میرے مخالف کچھ اور کہہ رہے تھے. مخالف سے میرا دشمن نہیں ہے, یعنی بس جو بھی اس وقت میرے مقابل پہ, یعنی میرے مقابل کچھ اور کہہ رہے تھے. میں کس طرح اپنی بات کا یقین دلاتی ہوں؟ چیخ کے, شور مچا کے, تیوریاں چڑھا کے, کمر پہ ہاتھ ٹکا کے, باڈی لینگویج کے ساتھ, اگلے کو چڑ چڑھا کے, یا خاموشی کے ساتھ؟ دیکھیے یاد رکھیے, کبھی اپنے لفظ ضائع نہ کریں. جب آپ بولیں کب؟ جب لوگ آپ کو سننا چاہیں. ایک بندہ جو آپ سے مخالفت کر رہا ہے, جو آپ سے ڈس ایگری کر رہا ہے, وہ کبھی نہیں آپ کی بات سنے گا. تو وہ وقت وہی ہوتا ہے جس کو ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ جلدی پر تیل ڈالنا. بعض مائیں اپنے بچوں کو پہلے خوب شرمندہ کرتی ہیں, پہلے خوب ان سے باتیں کر کے پھر ان کو نصیحتیں شروع ہو جاتی ہیں. بالکل غلط وقت ہوتا ہے وہ نصیحت کا. اس کا دماغ تو اندر سے کھولا ہوا ہے, اس کو تو اب زہر لگ رہی ہے اس وقت, چاہے آپ اس کی مائیں. پہلے اس کو کول ڈاؤن کریں. ایک کوڈ ورڈ میں نے رکھا ہوا ہے اپنے لیے بھی اور کئی لوگوں کو بھی کہتی ہوں کہ پہلے اپنے آپ کو روم ٹیمپریچر پہ لائیں. کبھی آپ نے فریزر کا کھانا کھایا ہو یا پکایا ہو, گوشت ہے, چکن ہے, فش ہے, تو وہ کیا کہتے ہیں؟ پہلے اس کو فریزر سے نکال کے روم ٹیمپریچر پہ رکھ دو, پہلے اس کو نارملی میلٹ ہونے دو, ڈیپ فروسٹ کرنا کہتے ہیں جس کو. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے اس میں بہت فریشنیس فیلنگ آئے گی. اور اگر آپ فریزر سے نکالیں پھر جلدی سے اس کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈال دیں, پھر کبھی پانی میں ڈال رہے ہیں, کبھی چولہے پہ چڑھا رہے ہیں, آپ دیکھیں اس کا ستیاناس ہو جائے گا, کچھ اس میں ٹیسٹ نہیں رہے گا, وہ بعض دفعہ زہریلا گوشت بن جائے گا. تو کبھی کسی کے ساتھ کلام کرتے وقت اس حالات میں نہ کریں کہ وہ تو اندر سے ابل رہا ہے اور آپ اوپر سے, آپ کہیں کہ میں نے تو کوئی کڑوی بات نہیں کی. नहीं वो पहले गर्म था, आपकी बात कड़वी थी, आपको भी नहीं पता चली। बात मीठी भी हो सकती है लेकिन अंदाज कड़वा होता है। तो यूसुफ अलैहि सलाम की बात से बादशाह उनको पहचान गया। यहाँ से पता चलता है कि वो बादशाह भी अकलमंद था, क्योंकि पहले भी देखिए कि उसका ख्वाब का असर दिखता है। तो बाज दफा कुछ लोग अल्लाह को तो नहीं पा पाते, लेकिन उनका हाल क्या होता है कि वो दुनियावी इंसानों को परख जाते हैं। बादशाह परख गया कि ये बंदा काम का है, और उसने हजरत यूसुफ को ऑफर कर दी कि आइए आप मेरे पास बैठिए, मैं आपसे खिदमत लेना चाहता हूँ। आज भी जो अच्छी कंपनीज होती है ना, वो अपनी कंपनी और अपने इदारे के बेनिफिट के लिए अच्छे लोगों को ले लेती हैं। इधर उनकी जो दाढ़ी है कि नहीं, वो मुसलमान है कि नहीं। आज हम मुसलमानों का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया जी, हमें अच्छी जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि मैं दाढ़ी में गया था। मैंने लोगों की बातें सुनी है, फोन पे बात हुई तो बहुत मेरे हक में बात कर रहे थे, सामने गए तो टोनी बदल गई। वो जी हम घर लेने गए, पहले तो बहुत अच्छे थे, जब हमें बुरकों में देखा तो उन्होंने नहीं दिया। आम बोलते ना, दुरुस्त नजरिया नहीं है हमारा। क्यों? इसलिए कि अगर मुसलमान में वही किरदार हो जो यूसुफ अलैहि सलाम का था, तो आप देखेंगे कि बादशाह तो अब खुद उनको बुला रहे। आज याद रखिए, किरदार की ताकत मुसलमान से खो गई। अल्लामा इकबाल ने क्यों दुआ दी थी कि खुदा तुझे जिद्दते किरदार दे। जिद्दत मीन कहते हैं न्यू करना, रेनोवेट करना। ए मुसलमान, तुझे अल्लाह किरदार की वो खूबसूरती दे दे कि मंजिल तुझे खुद पुकारे। वो एक और भी शेर है ना कि जिनमें को खूबी होती है मंजिलें उनको खुद पुकारती हैं। आज हम किरदार के गाजी नहीं बने, सिर्फ गुफ्तार के गाजी हैं, बड़के मारते हैं। बहुत गुमान है हमें कि हम मुसलमान हैं, हम नबी के उम्मती हैं। नतीजा क्या है? हार मैदान में पीछे। आज अगर हजरत यूसुफ वाली खूबियां हमारे अंदर आ जाएं, तो बादशाह क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें इन्ना लदईना मकीनुन अमीन, आप मेरे बहुत क्लोज होंगे, आप मेरे साथ होंगे। क्या पता चला कि बादशाह ये चाहता है कि मेरे मुल्क में काम का अच्छा बंदा हो। चूंकि यूसुफ अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने खास तौर पे खूबियां भी दी हुई थी, आपने देखा कि जेल में उनको लकब क्या मिला? अय्युह सिद्दीक। एक जुमला लिख लीजिए, हर नबी को सादिक और अमीन का लकब मिला। जैसे कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी सुना है कि नबूवत से पहले भी लोग आपको सादिक और अमीन कहते थे। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम को सादिक का लकब तो मिल गया था जेल में ही, और वो कैसी सच्चाई थी, कैसी खूबसूरती थी कि जेल में भी आप देखिए कि वो शख्स उनको सादिक और अमीन कह रहा है। लेकिन अब उनको अमीन का लकब मिलना था, इसलिए बादशाह कह रहा है इन लदईना मकीनुन अमीन, अब हम तुम पे ट्रस्ट करेंगे। चूंकि कल यूसुफ अलैहि सलाम ने नबूवत का काम करना था, उन पर लगा हुआ इल्जाम धुलना था, इसलिए अल्लाह ताला ने ये हालात पैदा कर दिए कि यूसुफ को बादशाह खुद ऑफर कर रहा है। आप लेके सोचिए, आज के दौर की किसी सुपर पावर की तरफ से आपके बेटे के नाम एक खत आए कि हमने आपकी बड़ी शोहरत सुनी है, आइए, हो सकता है कि हम आपको कुछ ओहदा दे दें। आपका बेटा जाए और बात इतनी खूबसूरत करे, इतनी अच्छी बात करे कि बादशाह के नहीं, सिर्फ आपको मैंने अपने इर्द गिर्द कैबिनेट में नहीं रखना, आपको हम वजीर भी बना रहे हैं। शर्त एक ही है कि आपके अंदर खूबी हो। मुसलमान काम करे दब के, मेहनत करे, पढ़े। किसी की कल बात अच्छी लगी दुनिया के बारे में है, और अगर उसको अच्छे रंग में सोचें तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने नसीहत की कि शुरू के 25 साल खूब पढ़ना, जिंदगी के 25 ईयर्स खूब पढ़ना, मेहनत करना, एजुकेट करो अपने आप को, फिर अगले 25 साल खूब कमाना, यानी मेहनत से और अच्छे तरीके से, तो आखिरी 25 साल जो होंगे, यानी अगर 75 तक भी जिंदगी हुई तो फिर तुम आराम से गुजारोगे। अब ये जुमला, इसको हम सारी बातों से इधर उधर से निकाल दें तो बड़ा खूबसूरत जुमला। मेहनत के वक्त में मेहनत, पढ़ने के वक्त में पढ़ना, और कमाने के वक्त में कमाना। अब ये नहीं कि पढ़ने में खो के भी दीन छोड़ दिया, और कमाने में नमाज और बच्चों को देखना छोड़ दिया, हम इस पर बात नहीं कर रहे, लेकिन राइट थिंग ऑन द राइट टाइम। आज हम मुसलमान इससे भूल गए। अल्लाह ने हमें दिन का 5 दफा का स्केड्यूल दिया था जिससे हमारी जिंदगी खूबसूरत तरीके से रेगुलेट हो सकती थी। फजर पे उठ जाओ और ईशा के बाद सो जाओ, ये कामयाबी की दो ऐसी कुंजियां हैं कि जो हमारी आधी से ज्यादा बीमारियों का इलाज है, हमारे आधे से ज्यादा गमों का दरमा है। जब हम फितरत के इस कानून को तोड़ते हैं तो याद रखिए कि ना हम दीन के रहते हैं ना हम दुनिया के रहते हैं। फिर रो धो के फजर पढ़ तो लेते हैं आंखें बंद करके, क्या आंखें पूरी खुल गई तो फिर तो सारा दिन ही चला जाएगा। कौन रात 3 बजे फजर पढ़ के सुबह 9 बजने का इंतजार करे? वजह क्या है कि हमारी रूटीन बदली होती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किरदार में हमें हकीकत में एक बंदा मोमिन दिखता है।